அர்ஹந்தாணம் நமோ சித்தாணம் நமோ ஆயிரியாணம் நமோ வஜாயாணம் நமோ லோயே சவசாஹுடம் மோக்ஷ மார்கஸ்ய நேதாரம் தேதாரம் கர்ம பூவ்ரதாம் ஜ்யாதாரம் விஸ்வ தத்வானாம் வந்தே தத்குணலப்தை வந்தே தத்குணலப்தை வந்தே தத்குணலப்தை. ஆஜ ஜேஷ்ட சுக்லா பஞ்சமி கா தின ஹை ஔர் ஆஜ கா யே தின பூரே தேஷ் மே பாரத் வர்ஷ் மே ஸ்ருத் பஞ்சமி கே ரூப் மே மனாயா கயா. मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि यहाँ आपके इस मयामी नगर में बहुत से लोग श्रुत पंचमी नाम से ही अपरिचित हैं। बहुत लोगों ने इस पर्व का नाम ही नहीं सुना है। क्या है ये पर्व? पर्व माने फेस्टिवल, त्योहार। आज कुछ बहुत बड़ी घटना घटी थी आज के दिन। इतिहास में 2000 वर्षों से आज के दिन को याद किया जाता है। लास्ट 2000 ईयर्स। ऐसा क्या हुआ था आज के दिन? श्रुत, श्रुत माने होता है शास्त्र। आपको पता है भगवान महावीर स्वामी की वाणी दिव्य ध्वनि मौखिक रूप से चलती रही है। भगवान महावीर स्वामी ने अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं था जो पढ़ करके सीखा हो। कुछ नहीं पढ़ा था उन्होंने, सब अंदर का ज्ञान था, दिव्य ज्ञान था। भगवान महावीर स्वामी ने जो कुछ भी कहा उसे किसी ने लिखा नहीं। इंद्रभूति गौतम गणधर ने उसे अपने हृदय में उतारा और जगत के जीवों को बताया। जिस दिन भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी उसी दिन शाम को इंद्रभूति गौतम को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जानते हैं हम सभी, है ना? गौतम गणधर जो थे वे अरहंत भगवान बन गए। फिर इंद्रभूति गौतम का उपदेश होने लगा और उस उपदेश को सुनकर और लोग उस बात को समझने लगे। जिस दिन इंद्रभूति गौतम को निर्वाण की प्राप्ति हुई उसी दिन सुधर्म स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। फिर सुधर्म स्वामी का उपदेश होने लगा। बहुत वर्षों तक, लगभग 12 वर्षों तक उनका उपदेश हुआ और जिस दिन सुधर्म स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई उसी दिन जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। जम्बू स्वामी अंतिम अनुबद्ध केवली कहलाते हैं। मौखिक चल रहा था सब, चलते चलते फिर केवली होना बंद हो गया। अंतिम केवली हुए श्रीधर स्वामी। अब केवल ज्ञानी नहीं हुए उनके बाद, कोई भगवान नहीं बना। लेकिन केवली तो नहीं हुए, श्रुत केवली हुए। श्रुत माने होता है शास्त्र। द्वादशांग के ज्ञाता श्रुत केवली। क्या नाम थे उनके? विश्वनंदी, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धनाचार्य और अंतिम श्रुत केवली हुए भद्रबाहु। भद्रबाहु का नाम तो सुना है बहुतों ने, द्वादशांग के ज्ञाता। परंपरा आगे चलती रही, गुरु उपदेश देते थे, शिष्य सुन लेते थे, फिर उपदेश दिए जाता था, शिष्य सुन लेते थे। लेकिन क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जितना गुरु के द्वारा सिखाया जाता था 100% शिष्य सीख लेते थे? हो ही नहीं सकता है, तो ये तो संभव नहीं है। इसका मतलब जितना सिखाया जाता था उससे कम सीखते थे तो वो आगे क्या ट्रांसफर कर पाते होंगे, उससे भी कम। धीरे धीरे करके भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण गए 683 वर्ष बीत गए, 683 ईयर। तब तक जैन परंपरा में कुछ भी नहीं लिखा गया था, सब मौखिक चल रहा था। फिर एक आचार्य हुए जिनका नाम था धर्मसेन, धर्मसेन आचार्य। धर्मसेन नाम के आचार्य को विकल्प आया, अरे यदि इन सबको लिखा नहीं गया तो धीरे धीरे करके ये सब समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये सब। उनको द्वादशांग में से एक अंग मात्र का ज्ञान था, एक अंग, और उसके भी अंश मात्र का ज्ञान था। उन्होंने सोचा कि इसे लिपिबद्ध किया जाना चाहिए, इसे लिखा जाना चाहिए, यदि नहीं लिखा गया तो आगे आने वाले समय में ये सब खत्म हो जाएगा, ऐसा विचार कर उन्होंने गिरिनगर के पास जहाँ वे तपश्चरण कर रहे थे गिरनार पर्वत पर, वहाँ गुफा में बैठे हुए उन्होंने संदेश भेजा नजदीक में महिमा नगरी में अरहत बली आचार्य के सानिध्य में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा था, मुनि सम्मेलन। वहाँ उन्होंने संदेश भेजा कि दो योग्य युवा मुनिराजों की जरूरत है। संदेश वहाँ भेजा और दो मुनिराज इनके पास में आ गए। ये विश्राम कर रहे थे, इन्हें स्वप्न में दो बैल दिखाई दिए, धर्मसेन आचार्य को दो बैल दिखे स्वप्न में। आंख खुली तो सामने दो मुनिराजों को खड़ा पाया, दो मुनिराज सामने दिखाई दिए, प्रसन्न हो गए। लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेदारी देनी है, जो कुछ भी लिख दिया जाएगा उसमें यदि कुछ गड़बड़ी हो गई, इनकी बुद्धि कितनी है, इनका क्षयोक्षम कितना है, इनकी योग्यता कितनी है, उसकी जांच करना, उसका निर्णय करना बहुत जरूरी है। ऐसा विचार कर कुछ भी ज्ञान देने के पहले उन्होंने एक को एक मंत्र दिया और दूसरे को दूसरा मंत्र दिया और कहा एक काम करो, 3 दिन तक इस मंत्र की साधना करो, कोई समस्या हो तो मेरे पास दौड़ते हुए मत आ जाना। एक को जो मंत्र दिया था उसमें एक अक्षर कम था, दूसरे को जो मंत्र दिया उसमें एक अक्षर ज्यादा था। क्या मंत्र की साधना करने के लिए कह दिया गया, जाओ साधना करो इनकी, मेरे पास मत आना दौड़ते हुए। दोनों ने मंत्र की साधना करना शुरू किया। जिनके मंत्र में एक अक्षर कम था उनके सामने मंत्र की सिद्धि होने पर देवी प्रकट हुई, लेकिन जो देवी प्रकट हुई उसके एक आंख कम थी, कानी थी। अरे ये क्या हुआ, देव लोग तो बहुत सुंदर होते हैं, सर्वांग सुंदर होते हैं, इसके तो कुछ कमी दिखाई दे रही है। उन्हें इस बात को भांपते हुए देर नहीं लगी कि मंत्र में कुछ कमी है, और यह विचार कर उन्होंने मंत्र को देखा गहराई से और जो अक्षर कम था उस अक्षर को उसमें जोड़ दिया और बहुत सुंदर रूप में देव वहां उपस्थित हुए। जंतरवासी बहुत सारे भूतों ने, देवों ने उनकी पूजा करी, आराधना करी, और उसके बाद में उन मुनिराज का नाम भूत बलि पड़ गया, भूत बलि नाम हो गया उनका। एक दूसरे मुनिराज थे जिन मुनिराज के मंत्र में एक अक्षर अधिक था, मंत्र की साधना करने पर ऐसी देवियां प्रकट हुई उनके सामने जिनके दांत ज्यादा थे, बाहर निकला था। उसे देखकर वे समझ गए कि कुछ न कुछ मंत्र में अधिकता है, स्वयं का ज्ञान ही समाधान कारक होता है। मंत्र को गहराई से देखा गया, जो अक्षर अधिक था उसे निकाल दिया गया और सही रूप में देव वहां प्रकट हुए। उन मुनिराज के दांतों की पंक्तियां भी कुछ टेढ़ी मेढ़ी थी, उनको बहुत सुंदर देवों के माध्यम से बना दिया गया, पुष्प के समान दंत जिनके हो गए। उन मुनिराज का नाम क्या हो गया, पुष्प दंत। दो मुनिराज हैं ये, एक का नाम पुष्पदंत है, दूसरे का नाम भूतवली है। ये दोनों वहां मुनिराज, इन दोनों मुनिराजों ने आकर कुछ नहीं कहा और गुरु ने जैसा कहा था मंत्र की साधना की, बोले हाँ हो गई। कोई ऐसा घमंड नहीं किया कि महाराज आपने मेरे को मंत्र गलत दिया था और मैंने तो क्या सुधार दिया उसको, अब ये घमंड का क्या काम है, गुरु के सामने क्या घमंड, गुरु हमारी सब बातों को जानते हैं। दर्शनाचार्य पहचान गए उनकी योग्यता को, उनको उपदेश दिया। बहुत लंबे समय तक उपदेश देने के उपरांत दोनों को आदेश दिया कि तुम मुझसे दूर चले जाओ और जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है उस ज्ञान को लिपिबद्ध करो, उसे लिखो। और दोनों मुनिराजों ने जाकर उस बात को लिखना प्रारंभ किया। पुष्पदंत मुनिराज बड़े थे इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम लेखन कार्य प्रारंभ किया, भूतबली का सहयोग रहा। पता है सबसे पहले क्या लिखा गया, कौन से ग्रंथ को लिखा उन्होंने, जो चर्चा की उन्होंने, वो ग्रंथ जो उन्होंने लिखना प्रारंभ किया था उस ग्रंथ की पूर्णता के समय 6 खंड थे उस ग्रंथ के, उस आगम के 5 खंड पुष्पदंत आचार्य के द्वारा लिखे गए थे, 6ठा खंड भूतबली आचार्य के द्वारा लिखा गया। ऐसे आगम का नाम क्या हुआ, षट खंड आगम। जिस आगम के 6 खंड हैं उसका नाम हो गया षट खंडागम। ये पहला ग्रंथ दिगंबर जैन परंपरा का। क्या दिगंबर जैन परंपरा में ऐसा माना जाता है कि द्वादशांग में से 11 अंग वर्तमान में उपलब्ध नहीं है और 12वें अंग के माध्यम से जो प्रचार प्रसार दिखता है वो सब 12वें अंग में से ही निकला है। श्वेतांबर आमनाय में ऐसा माना जाता है कि 12वां अंग तो नहीं बचा लेकिन 11 अंग उपलब्ध हैं। क्या उनके लिए भी श्वेतांबर संप्रदाय में अनेक वाचनाएं हुई जिनमें उन अंगों के संकलन की बात हुई। मथुरा में आगम वाचना हुई, वो माधुरी आगम वाचना के नाम से कहलाई। एक वल्लभी आगम वाचना हुई। इसी तरह से 3 जगह पर आगम वाचनाएं हुई है जिनमें द्वादशांग के संकलन के प्रयास हुए। हमें ये कहना है दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार लिपिबद्ध ग्रंथ जो सबसे पहले लिखा गया और लिख करके पूर्ण हुआ जिसका नाम षटखंडागम था, वो ग्रंथ आज के दिन लिख करके पूर्ण हुआ था। कौन सा दिन, जेठ माह, ज्येष्ठ तिथि के हिसाब से शुक्ल पक्ष और पंचमी तिथि, ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी का दिन। इससे पहले कुछ नहीं लिखा गया था। जब ये ग्रंथ लिख करके पूर्ण हुआ तो समस्त मुनि संघ ने, श्रावकों ने, चतुर्विध संघ के माध्यम से शास्त्र की पूजा की, शास्त्र की आराधना की, क्योंकि जिनवाणी सुरक्षित हो गई थी और इस पंचमी को श्रुत पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। ये शास्त्र पंचमी के रूप में, श्रुत पंचमी के रूप में मनाई जाने लगी। आपको जानकर के आश्चर्य होगा ये जो लिखा गया है षटखंडागम ग्रंथ, इस षटखंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण वो है नमोकार महामंत्र। नमोकार महामंत्र इसका मतलब जैन परंपरा में फर्स्ट वर्ड यदि कोई लिखा गया है, फर्स्ट सेंटेंस यदि कोई लिपिबद्ध है, उपलब्ध होता है, सबसे पहले लिखा गया तो वो है नमो अरिहंताणम। सेकंड सेंटेंस क्या है, नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम फिर नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्य साहुणम। ये जैन परंपरा में सबसे पहले लिखा गया ये मंत्र है जो मंगलाचरण के रूप में लिखा गया। मैं इस महामंत्र के संदर्भ में अभी कुछ चर्चा नहीं करने वाला हूं आपसे। नमोकार महामंत्र के संदर्भ में यदि आप जानने के इच्छुक हैं तो ये लिंक लिखी है यहाँ पर नीचे, इस लिंक पर जाएं और पहला और दूसरा प्रवचन सुने। नमोकार मंत्र की चर्चा पूरी विस्तार से, प्रमुखार मंत्र क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसमें किसे नमस्कार किया है, क्यों नमस्कार किया है, किनको पहले किया, किनको बाद में किया, उसमें कितने अक्षर है, कितने मात्राएं हैं, कैसे शुद्ध बोला जाता है, किस रूप में लिखा गया है, कौन सी भाषा में लिखा गया है। हमें पता तो हो नमोकार मंत्र के बारे में, हमें तो एबीसीडी नहीं पता कुछ भी। ये नमोकार महामंत्र सबसे पहले षटखंडागम ग्रंथ में लिखा गया, शास्त्र की सुरक्षा हो गई और ये पर्व श्रुत पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। आज हिंदुस्तान के कोने कोने में, यहाँ तो आप लोगों ने सुना नहीं इस पर्व के बारे में, लेकिन हिंदुस्तान के कोने कोने में ये श्रुत पंचमी पर्व मनाया जाने लगा है। धूमधाम से जनवाणी की शोभा यात्रा निकाली जाती है, विधान किए जाते हैं, श्रुत स्कंद विधान किया जाता है, द्वादशांग जनवाणी की चर्चा की जाती है, शास्त्रों की संभाल की जाती है, शास्त्रों के ऊपर कवर चढ़ाया जाता है, उनकी धूल साफ की जाती है, अलमारियों से निकाला जाता है। लेकिन भाई ये श्रुत पंचमी मनाने की सार्थकता ये सिर्फ जनवाणी की पूजन करके नहीं है, इसकी सार्थकता तो जनवाणी को अपने हृदय में उतार करके है। श्रुत की सुरक्षा का काम तो हो गया, अब क्यों मनाएं श्रुत पंचमी, ये काम तो हो गया था ना, आज क्या जरूरत है। मैं अपनी चलती हुई चर्चा से इस चर्चा को जोड़ना चाहता हूँ। पांच ज्ञान सूत्र पढ़ा था कल हमने, मति श्रुतावधि मनह पर्याय केवलानि ज्ञानम। पांच ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनह पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। आगे चल करके आएगी चर्चा, थोड़ा सा आगे बढ़ करके दो पांच सूत्रों के बाद में श्रुत ज्ञान की चर्चा आएगी। श्रुत उसे दो रूपों में कहा गया है, वो शास्त्र है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आज श्रुत पंचमी मनाने की सार्थकता क्या है और कैसे मनाएं हम, बोलो। ये काम तो हो गया ना, आज तो कम थोड़ी ना, शास्त्र बहुत लिखे। ये तो उस जमाने की बात है जिस जमाने में एक अक्षर भी लिखा गया नहीं था, सब वर्बली चलता था, एक ने समझाया, दूसरे ने सुना, उन्होंने समझाया, उन्होंने सुना, नीचे ट्रांसफर करते चले गए, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर था, फिर लिख दिया गया, बात खत्म हो गई। अब आज क्या जरूरत है कि नहीं, आज भी जरूरत है, आज भी जरूरत है। उस समय खतरा इस बात से था कि यदि लिखा नहीं गया तो खत्म हो जाएगा, आज मुकुंद भाई खतरा दूसरे प्रकार का है, आज खतरा दूसरे प्रकार का है। शास्त्र लिखे तो हैं, भाषा समझने वाले नहीं है, ठीक है, उनको पढ़ने वाले नहीं है। आज यदि इनको पढ़ने वाले तैयार नहीं हुए, आज यदि इनको समझने वाले नहीं हुए, आज यदि इस तत्व ज्ञान को, आज यदि इस जनवाणी की चर्चा को हमने हमारी आगामी भावी पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं किया, तो आप जानते हैं क्या होगा रमेश भाई, होगा ये कि हमारी आगे आने वाली एक पीढ़ी नहीं, सैकड़ों पीढ़ियों से ये नमोकार मंत्र गायब हो जाएगा। आप जानते हैं कितना बड़ा अपराध होगा। मैंने एक बात कही है, आपने सुनी होगी, उसमें पहले दूसरे प्रवचन में, बालबोध भाग एक के पहले दूसरे प्रवचन में, नमोकार मंत्र मैं बता सकता हूँ। दिनेश भाई आपने कब याद किया था? सतीश भाई मैं गारंटी ले सकता हूँ आपने नमोकार मंत्र जिस उम्र में याद किया था उस उम्र में आपको पढ़ना नहीं आता था क्या महेंद्र भाई? आज तक किसी भी जैन व्यक्ति ने नमोकार महामंत्र किताब में पढ़कर याद नहीं किया। एबीसी पढ़ना नहीं आता हो, क ख ग पढ़ना नहीं आता हो, आ अनार वाला पढ़ना नहीं आता हो, बच्चा बोलना शुरू करता है तो माँ बाप उसे नमोकार मंत्र सिखा देते हैं। बोलो, हमने भी नमोकार मंत्र उसी उम्र में सीखा है जिस उम्र में हमने बोलना सीखा था, जिस उम्र में हम स्कूल नहीं गए थे, पाठशाला पढ़ने नहीं गए थे और हमने नमोकार मंत्र सीख लिया था। मेरा कहने का मतलब यह है कि नमोकार मंत्र यदि आज हमारी जवान पर है तो पढ़ करके नहीं है, सुन सुन करके है, और सुन सुन करके भी ये चीज जीवित रह सकती है, ये इस बात का प्रमाण है कि 2000 वर्षों में हुई सवा सौ पीढ़ियों में वो नमोकार मंत्र ट्रांसफर होकर के हम तक चला आया है। हमने हमारे माँ बाप से सीखा, उनको उनके माँ बाप ने सिखाया,
ان کو ان کے ماں باپ نے سکھایا, انہوں نے ان کے ماں باپ سے سیکھا تھا. کہاں سے چلی آ رہی ہے یہ پرمپرا؟ 2000 برسوں سے چلی آ رہی ہے. لیکن دھیان رکھنا, یدی یہ پرمپرا آگے نہیں بڑھی تو کیا ہوگا؟ آج یدی ہم نے یہ نموکار منتر آگامی پیڑھی میں ٹرانسفر نہیں کیا, آگامی پیڑھی کو نہیں سکھایا, یدی ہم نے درشن کرنے کی ودھی نہیں سکھائی, یدی ہم نے یہ 6 دریہ 7 تتو کے نام سویم نہ سیکھے اور اوروں کو نہیں سکھایا آگامی پیڑھی میں, تو یہ 7 تتو 6 دریہ کی چرچا کرنے والے آپ کی پیڑھیوں پیڑھیوں سے غائب ہو جائیں گے. نموکار منتر بھولنے والے آپ کی آگامی پیڑھیوں میں نصیب نہیں ہوں گے, جین کہلانے لائق نہیں ہوں گے. یہ کتنی بڑی جواب داری ہے ہماری کہ ہم اس تتو گیان کو آگے ٹرانسفر کریں, آگے پہنچائیں لوگوں تک. جن جن تک پہنچنی چاہیے یہ بات, آگے پہنچنی چاہیے. کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے ہماری؟ اس سمے جو جنوانی لکھی گئی تھی وہ پراکرت میں لکھی گئی تھی, پھر سنسکرت کا یوگ آیا, سنسکرت میں لکھی گئی. زمانہ بدلا, پراکرت اور سنسکرت سمجھنے والے کم ہو گئے, ہندی میں ویاخیائیں لکھی گئی, گجراتی میں ٹرانسلیٹ ہوا. لیکن آج تو ہندی اور گجراتی سمجھنے والے بھی آگامی پیڑھیوں میں کم دکھتے ہیں. آگے کیا ہوگا مہندر بھائی؟ کون پڑھے گا ان کتابوں کو؟ آپ نے یہ پیج یہاں لا کر کے رکھ دیا, یہ پیج چھاپ دیا, یہ پیج پڑھنے کی پاترتا نہیں دکھتی ہے ہمارے کو آگامی پیڑھیوں میں. یہ ہمارا مہابھاگیہ ہے کہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے سمست شروتاؤں کم سے کم میری بات کو سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, میری لینگویج کو پہچان پا رہے ہیں, پکڑ پا رہے ہیں میری بھاشا کو. لیکن آگے آنے والے یہ دن بے دن دور نہیں ہے جب لوگ یہ ہندی سمجھنے سے کہیں گے کہ یار یہ لینگویج کون سی لینگویج ہے. 10-20 سال بعد میں لوگ ہندی نہیں بول پائیں گے. یہ بات میں امریکہ کی نہیں کہہ رہا ہوں, یہ پوزیشن ہندوستان کی بتلا رہا ہوں. کیا مہندر بھائی ہندی میڈیم اسکول بند ہو رہے ہیں؟ بند ہو گئے ہیں. گاؤں گاؤں میں ہندی میڈیم اسکول جو چلتے تھے وہ بند ہو گئے. مکند بھائی گجراتی میڈیم اسکول چلتے ہوں گے لیکن بہت کم. ہر ویکتی اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھانا چاہتا ہے, انگلش میں بات کرنا, انگلش تو انگلش بس اور کچھ نہیں, وہی لینگویج. اور یہاں تو ہندی کے لیے تو بہت مشکل ہے, ہندی سکھانا گجراتی سکھانا, ہندی گجراتی سمجھ میں آنا. تھوڑی سی ٹی وی کی مہربانی دکھتی ہے جو ہمارا پروچن کچھ لوگوں کے سمجھ میں آ جاتا ہے. باقی کہاں سمجھنے والے دکھتے ہیں. اور ٹی وی میں بھی دیکھو آپ, آج کے 20 سال پہلے کی ہندی مووی دیکھو اور آج کی ہندی مووی دیکھو, زمین آسمان کا انتر دکھے گا. آج ہندی مووی ہندی نہیں رہی ہے, انگلش جیسی ہو گئی ہے, آدھا انگلش ہوتا ہے اس میں. ہر 2-3 منٹ میں آپ کو 2-4 واقعے آپ کو انگلش کے سننے کو مل جائیں گے اس میں. ہندی مووی کی بات کر رہا ہوں میں, مانے انگلش اتنی حاوی ہو گئی ہے ایسے سمے میں. یہ گجراتی میں, ہندی میں, سنسکرت اور پراکرت میں لکھے گئے یہ جناگم, یہ شاستر, ان شاستروں کو کون پڑھے گا, کیسے پڑھے گا اور کیسے یہ لوگ سمجھ پائیں گے آگے؟ ایک ورڈ تو سمجھ میں آتا نہیں ہے. کئی بار میں سمجھاتا ہوں, بولتا ہوں تو آپ کے یہیں امریکہ میں بہت لوگ میرے کو سامنے سے کہتے ہیں پنڈت جی بہت بھاری شبدوں کا پریوگ کرتے ہو, آپ کی ہندی جو ہے نا یہ تھوڑی کٹھن ہے, ہندی کٹھن لگتی ہے ہمارے کو. کیسے سمجھیں گے سنسکرت, کیسے سمجھیں گے اما سوامی آچاریہ کے سنسکرت کے سوتروں کو؟ بولو تن نسرگا ددیگما دعا نسرگج, پھر کیا ہوتا ہے نسرگج ادیگمج, یہ کہاں سے شبد لے آئے؟ یہ ایسے بھاری بھاری شبد کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ کتنی بڑی جواب داری ہے ہماری. بولو ٹرانسلیٹ کروائیں ان کو انگلش میں, کیا جن جن تک پہنچانے کے لیے. فرینچ میں ٹرانسلیشن ہونا چاہیے, جرمنی میں ٹرانسلیشن ہونا چاہیے, آپ کے تتوار پتر کے ٹرانسلیشن ہونے چاہیے. انگلش میں ہو گیا ہے لیکن اور بھاشاؤں میں ہونا چاہیے, نئی نئی بھاشاؤں میں پہنچاؤ, ان کے پڑھنے والے تیار کرو, ان کے سمجھنے والے تیار کرو. کیونکہ لپی بدھ بھی ہو گیا, ٹرانسلیٹ بھی ہو گیا, لیکن یدی سمجھنے سمجھانے والے نہیں ہوں گے تو ہمارے لیے تو کالا اکثر محنت برابر ہے. کیا کریں, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. آج کتنے شاستر ایسے ہیں جن شاستروں کا مرم ہم نہیں سمجھ پاتے, جن کی بھاشا نہیں سمجھ پاتے. گومٹ سار کے اندر ایسی ایسی گنت ہے جس گنت کو یونیورسٹی کے میتھس کے پروفیسر نہیں سمجھ پاتے, ایسی گنت ہے. بولو वहां की मैथ से, जो घुमटकार की गणित की बात करता हूं मैं, उस गणित से ये गणित निकली है जो बड़े लेवल पर पढ़ाई जाती है, हायर मैथमेटिक्स जो पढ़ाई जाती है ये वहां से निकली है। ये गुत्थियां सुलझती नहीं है हमसे, कितना कठिन काम हो गया है, नहीं है हमारी कोई जवाबदारी। तीर्थंकरों जैसा काम कहा है महेंद्र भाई इसको, तीर्थंकरों जैसा काम, यहां जो काम करते हैं, जो पढ़ाते हैं आकर के, जो कक्षा लेते हैं, जो प्रवचन करते हैं, जो स्वाध्याय कराते हैं, उनका काम साधारण काम नहीं है। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा जो काम करते हैं, गणधरों के माध्यम से जो काम किया, ये काम किया जा सकता है। बोलो, आप नहीं कर सकते मनोज भाई ये काम? अरे नहीं साहब, हम कहां कर, हम किसको समझाएंगे, हम समझाने में नहीं है पात्रता हमारे, तो कोई बात नहीं। आप यदि समझ नहीं सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप समझने के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। ये काम भी वही काम है जो काम दर्शनाचार्य के माध्यम से हुआ, ये वही काम है जो भूत बलि और पुष्पदंत आचार्य के माध्यम से काम हुआ, ये वही काम है जो इंद्रभूति गौतम गणधर के माध्यम से हुआ, ये वही काम है जो भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि के माध्यम से हुआ। ये काम हल्का नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। आप किसी व्यक्ति को एक कॉल करके कह सकते हैं कि 3 दिन स्वाध्याय का टाइम है, यहाँ 3 दिन समय निकालो वीक में सुनने आने के लिए, ये कह सकते हैं आप किसी को। आपके द्वारा दी गई प्रेरणा पता नहीं किसी का जीवन बदल सकता है, जीवन भर याद करेंगे आपको गिरीश भाई, जीवन भर आपका उपकार नहीं भूलेंगे वो व्यक्ति, लाइफ टाइम। यार इन्होंने हमारे को ऐसी निधि दी है, आप किसी व्यक्ति को मिलियंस देकर के चले जाओ, हो सकता है वो व्यक्ति आगे चल करके आपको भूल जाए, लेकिन आपने यदि जीवन जीने की कला सिखाई है, आपने यदि ये तत्व ज्ञान दिया है, आपने यदि उसको सुखी रहने की कला सिखाई है, वो लाइफ टाइम भूल नहीं सकता है। अरे पैसा तो आज है और कल नहीं है, ये वो कला है जो जन्म मरण का अभाव करा देती है। नहीं कर सकते ये काम, नहीं हो सकता है हमारे माध्यम से, ये भी कठिन काम है, हम जनवाणी समझा नहीं सकते। तो जो समझा सकते हैं उनको तो प्रमोट कर सकते हैं, नहीं कर सकते उनका उत्साहवर्धन तो कर सकते हैं, उनको किसी को उपलब्ध तो करा सकते हैं, वेबसाइट का रास्ता तो दिखा सकते हैं, पुस्तक तो किसी को दे सकते हैं पढ़ने के लिए, ये काम तो हो सकता है, कोई प्रवचन सुनने के लिए CD तो अवेलेबल करा सकते हैं किसी को, ये काम भी नहीं कर सकते हम। कि देखो भाई, मैं तो समझा तो नहीं सकता, किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा कि भाई हमें जैन धर्म समझना है, तो आप ये कहते थे मैं तो नहीं समझा सकता, तो मैं नहीं समझा सकता, लेकिन मैं आपको एक रास्ता बता सकता हूँ कि आप इसके माध्यम से जैन धर्म सीख सकते हैं। ये काम तो हो सकता है कि नहीं हमारे द्वारा? बहुत काम है सब, क्या हर व्यक्ति के लिए काम है क्या? कोई व्यक्ति यदि यहाँ नहीं आ सकता है, आप उसे अपनी गाड़ी में साथ में बिठा के ला सकते हैं क्या? कोई यहाँ आकर के नहीं सुन सकता है, आप उसे कॉन्फ्रेंस पर जोड़ करके सुनवा सकते हैं। इस श्रुति की सुरक्षा की बात कर रहा हूँ मैं, जिनवाणी की सुरक्षा की बात कर रहा हूँ, ये जिनवाणी माँ है हमारी, क्या महेंद्र भाई? मैंने लिखा अभी 2 पेज का लेख, एक आपको भेजा मैंने, जिनवाणी माँ है हमारी। क्यों है जिनवाणी माँ? जिनवाणी को माँ क्यों कहते हैं? बोलो, माँ किसे कहते हैं? जो जन्म देती है उसका नाम माँ है। खाना सिखाए, पीना सिखाए, बोलना सिखाए, चलना सिखाए, उसका नाम माँ नहीं है क्या? खाना पीना और बोलना सिखाए, उसका नाम माँ नहीं है? ये तो कोई भी कर सकता है। किसी बच्चे की माँ का स्वर्गवास हो गया तो उसको क्या दूसरे लोग बोलना नहीं सिखाते, चलना नहीं सिखाते, खाना पीना नहीं सिखाते? कोई भी सिखा सकता है। लेकिन माँ का लक्षण क्या है? माँ का लक्षण ये है, जन्म देने वाली, जो जन्म देवे उसका नाम है माँ। एक ही लक्षण है, ज्ञानियों की उत्पत्ति, ज्ञानियों का जन्म जिनवाणी माँ से होता है, इसलिए जिनवाणी को माँ कहते हैं। आत्मार्थी पना जिनवाणी के सानिध्य में पनपता है, उत्पन्न होता है। जिनवाणी का सानिध्य नहीं होगा तो आत्मार्थियों का जन्म नहीं होगा, ज्ञानियों का जन्म नहीं होगा। ज्ञानियों की जन्मदाता होने से जिनवाणी माँ कहलाती है। और इतना ही नहीं, अकेले जन्म देने वाली नहीं है, ये जिनवाणी माँ हमारे को सब कुछ सिखाती है। बच्चे सीख पाए या न सीख पाए, माँ का दोष नहीं है, माँ तो सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। ये जिनवाणी माँ हमारे को सिखाती है, मुकुंद भाई क्या खाना और कब खाना और कैसे खाना, भक्ष्य खाना और अभक्ष्य नहीं खाना, दिन में खाना और रात में नहीं खाना, खाने योग्य पदार्थों को खाना और मध्यमास मधु का सेवन नहीं करना, ये जिनवाणी माँ हमें सिखाती है। बोलो तो कैसे बोलना है, ये जिनवाणी माँ हमें सिखाती है। ये बात अलग है कि 2 साल की उम्र में बोलना सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना, कब बोलना और कैसे बोलना, इसे सीखने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। जिनवाणी माँ हमें बोलना सिखाती है, बोलने की कला सिखाती है, हित मित प्रिय वचन बोलना, ये जिनवाणी माँ सिखाती है हमारे को, ये माँ ने सिखाया है। चलना सिखाती है, चलो तो 4 हाथ जमीन देख करके चलना, नीचे देख करके चलना, जीवों के प्रति करुणा भाव होना, क्या नहीं सिखाती है जिनवाणी माँ, बोलना चलना खाना पीना उठना बैठना सब कुछ तो जिनवाणी ने सिखाया है हमारे को। यदि मैं ये कहूं कि ये जिनवाणी हमारे को जीवन जीने की कला सिखाती है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जीवन जीना सिखाती है। कैसे जीवन जीना, कषायों से जीना के मंद कषाय से जीना, संतोष से जीना के लड़ झगड़ करके जीना, देव बन करके जीना या दानव बन के जीना, ये जिनवाणी सिखा रही है कैसे जीना है। जिंदगी तो निकलेगी आपकी और क्या पता किसके 100 दिन कब पूरे हो जाएं, लड़ लड़ करके बिताने, सर फोड़ के निकालना है समय, माता फोड़ दो एक दूसरे का, बोलो ये सिखा रही है जिनवाणी माँ हमारे को। सीखो एक बार जिनवाणी से कैसे जिया जाता है, कषायों पर कैसे विजय प्राप्त की जाती है, भगवान बनने की विधि सिखाती है जिनवाणी माँ। अरे जीवन जीना ही नहीं, मरना तो कैसे मरना ये भी सिखाती है जिनवाणी माँ, समाधि पूर्वक मरना ये सिखा रही है जिनवाणी। उपकार है जिनवाणी का हमारे ऊपर, तो हमारा दायित्व बनता है कि जिनवाणी को आगामी भूमिका में आगामी लोगों तक ट्रांसफर करें, पहुंचाएं। आपको नहीं लगता है गिरीश भाई ऐसा कि आपको ये तत्व ज्ञान मिला है तो कुछ बहुत बड़ा काम हो गया है, कुछ उपलब्धि है, कोई चीज हासिल हुई है हमारे को? आपको नहीं लगता है कि भेद विज्ञान की चर्चाएं हमारे जीवन में सुख शांति प्रदान करने वाली है? आपको नहीं लगता है ये उपयोगी बातें हैं? निमित्त उपादान की चर्चा, निश्चय व्यवहार की चर्चा, क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा, कर्म उदय की चर्चा, कर्म फिलोसफी, प्रथमानुयोग की चर्चाएं, घटनाएं, प्रसंग, आपको नहीं लगता ये अपने लिए उपयोगी है? हमारे विचार में आने मात्र से आकुलता मिट जाती है भाई साहब, टेंशन मिट जाती है, सारे संकट मिट जाते हैं, बड़े से बड़े संकटों को झेलने की ताकत मिल जाती है आपको। किसके दम पर? इस तत्व ज्ञान के दम पर। इतनी बड़ी चीज है, आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे खुश रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें? नहीं चाहेंगे मनोज भाई? चाहते हैं, सब चाहते ही हैं। अकेले हम नहीं ला सकते हैं साथ में, हम बेदखल नहीं कर सकते हैं उन्हें संपत्ति से। ये है असली असेट उनके लिए जो ट्रांसफर की जाने योग्य है, ये असली संपत्ति है, ये खजाना है आपके पास में, ये निधि है आपके पास में। यदि आपने उनमें संस्कार नहीं डाले तो ये मान करके चलिए आपके घर में रखी हुई जिनवाणी एक दिन रद्दी के भाव बिकेगी। क्या महेंद्र भाई, कौन पड़ेगा? अलमारियां खाली करेंगे, क्या करेंगे? देखते हैं हिंदुस्तान में बहुत जगह पर लोग मंदिरों में लाला करके पटक देते हैं, रद्दी में बेच देते हैं। हमने ये शास्त्र तत्वार्थ सूत्र जैसे शास्त्र हमने रद्दी वाले के ठेले पर पड़े हुए देखे हैं, लोगों ने बेच दिए हैं। सोचिए क्या होगा जिस देश में, जिस जगह पर जिनवाणी माँ की या अपनी माँ की कीमत नहीं है, वहां क्या होगा? ये जिनवाणी माँ है जो हमें पिता जैसा बनने की प्रेरणा देती है। ये जनवाणी माँ है जो अरहंत पिता जैसा बनने की बात बतलाती है, वो कला सिखाती है। तुम भगवान कैसे बन सकते हो, तुम परमात्मा कैसे बन सकते हो, तुम अनंत सुखी कैसे हो सकते हो, ये जनवाणी सिखा रही है हमारे को। तो कुछ दायित्व है हमारा, कुछ सीखेंगे, कुछ संकल्प ले सकते हैं। सबसे बड़ा काम, सबसे पहला काम तो ये, प्रतिदिन स्वाध्याय का संकल्प लीजिए। फर्स्ट काम, श्रुत पंचमी महापर्व के इस प्रसंग पर सबसे पहला काम हमारे माध्यम से ये होगा, एक दिन भी ऐसा नहीं बीतेगा जो दिन जनवाणी माँ के सानिध्य के बिना हमारा बीते, एक दिन भी ऐसा नहीं होगा। प्रतिज्ञा लीजिए आप कि जनवाणी को समझने का अवसर यदि हमारे को मिलेगा तो 100 काम छोड़ करके जनवाणी सुनने के लिए आएंगे। ये संकल्प लिया जाना चाहिए हमारे माध्यम से। सब तो ये मनाना सार्थक है, मना लो पंचमी श्रुत शास्त्र, बहुत अच्छी है। जनवाणी की चर्चाएं सुंदर लगती है, अच्छी लगती है। फिर सेंद्र भाई बुलाते रहा करो स्कॉलर्स को, स्कॉलर्स को बुलाते हो तो हम आ जाते हैं सुनने के लिए। बाकी फिर और तो क्या है, फिर तो जिंदगी चल रही है ऐसी। भाई साहब किसी स्कॉलर की जरूरत नहीं है क्या? आप स्वयं तैयार हुई है अपने लिए, अंत समय में यही काम आएगा, ये सब काम आएगा जब आपके बच्चे सामने जवाब देंगे, ये सब काम आएगा जब पत्नी गालियां देगी, ये सब काम आएगा जब बच्चे साथ छोड़ देंगे, ये सब काम आएगा जिसे आपने बुढ़ापे का सहारा समझा था वो आपको छोड़ देगा, ये सब काम आएगा जब आपके लिए ओल्ड हाउस, क्या ओल्ड एज, वृद्धाश्रम में जब हमें जगह मिलेगी तो ये काम आएगा। अरे पंडित जी हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं है। हाँ क्या बात कर, हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं है, हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं है। किसी के बच्चे ऐसे नहीं होते, लेकिन मैं आपको बतलाऊं पिछले 150 वर्षों में महेंद्र भाई, क्या डाटा है मेरे पास में, पिछले 150 वर्षों में जितने वृद्धाश्रम नहीं खुले, पिछले 15 वर्षों में उससे 10 गुना ज्यादा वृद्धाश्रम खुल गए हैं। और पिछले 15 वर्षों के अंदर जितने वृद्धाश्रम खुले हैं पिछले 1.5 साल में उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गए हैं, बन गए हैं। और आप जानते हैं यदि वे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? डिमांड होती है तो सप्लाई होती है। क्या डिमांड है उसकी? क्या डिमांड बढ़ती जा रही है, कौन काम आएगा उस समय पर? हम ये नहीं कहते कि आपके बच्चे ऐसे हों, हम तो ये भावना भाते हैं कि उनमें धार्मिक संस्कार हों। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है महेंद्र भाई आपके परिवार को देखकर, मुकुंद भाई, रमेश भाई, सब तीनों भाई इतना मिलकर के रहते हैं, पिताजी की सेवा करते हैं, बहुत दुर्लभ है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। मतलब सब साथ में मिलकर के पिताजी की सेवा करें, 95 साल के पिताजी की सेवा करना, उन्हें संभालना, उनको ध्यान देना, छोटी छोटी सी बातों में, ये नहीं होगा ये आगे आने वाले समय में। मतलब बहुत अच्छे हैं आप लोग, बहुत अच्छे हैं दिल से, इसलिए ये सब कर पा रहे हैं। और उनका पुण्य का उदय, उनका पुण्य का उदय हो और आपकी अच्छाई है। लेकिन नहीं मिलते हैं ऐसे परिवार, नहीं दिखते हैं ऐसे संयुक्त परिवार जो इस उम्र में भी साथ में रहते हो। बोलो, दिखते हैं आपको कोई दिनेश भाई ऐसे परिवार? दो बच्चे हो, शादी होने के पहले तो अलग होने की सोचते हैं क्या? और यहाँ बच्चों की नहीं, पोतों की शादियां हो गई हो, पोते पोतियों की, और फिर साथ में रह रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है क्या रमेश भाई? बहुत बड़ी चीज है ये। मतलब मैं तो प्रशंसा करता हूँ, मैं इसलिए आज भरी सभा में प्रशंसा कर रहा हूँ कि मुझे अच्छा लगा ये देखकर, मैंने महसूस किया है, जो बात महसूस की है वो मैं बोल रहा हूँ। भावना भाता हूँ ये चीज बनी रहे, बनी रहेगी, खैर कोई बात नहीं है, क्योंकि धार्मिक संस्कार है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, क्योंकि तत्वज्ञान है, क्योंकि जिनवाणी है ये। यदि जिनवाणी आपके साथ में होगी तो परिस्थितियां कैसी भी हो आप अपनी मनस्थिति को संभाल पाएंगे। ये कंट्रोल कर रही है चीज, आपके आपके मन को कंट्रोल कर रही है। आप देखो आज कितनी परेशानी है पूरे समाज में, दुनिया में, ब्लड प्रेशर है, کیا کہیں گے, ڈپریشن کا شکار, جو دیکھو وہ ڈپریشن کا شکار دکھائی دیتا ہے. گھر گھر میں ڈپریشن کے گولیاں کھاتے ہوئے لوگ دکھائی دیں گے. مانسک پریشانی ہے, تکلیف کچھ نہیں ہے, باہر میں سب کچھ ہے, لیکن یہ بس اس کی تکلیف ہے, سوچ کی تکلیف ہے بس. یہ کیا ہو رہا ہے, تکلیف کس چیز کی ہے, پرابلم کیا ہے؟ لمبے چوڑے گھر ہیں, مکان ہیں, ساری سویدھائیں ہیں, نوکر چاکر ہیں, سب کچھ ہو, لیکن پھر بھی تکلیف کیا ہے؟ شانتی نہیں ہے, شانتی نہیں ہے. تو کیسے ملے گی شانتی؟ جس گھر میں جنوانی نہیں ہے وہاں شانتی نہیں ہو سکتی. جہاں جنوانی کا اولمبن نہیں ہے, جہاں تتو گیان نہیں ہے, بھید وگیان نہیں ہے, بھید وگیان کی چرچائیں نہیں ہیں, وستو سوروپ کا وچار نہیں ہے, کہاں سے آئے گی شانتی؟ کیسے ملے گی بتاؤ؟ شانتی چاہیے آپ کو, پیس ہر ویکتی چاہتا ہے, ہر ویکتی کو چاہیے لائف میں, پیس فل لائف ہو ہماری. اشانتی کے بیچ تو خود بو رہا ہے, کہ پیس فل لائف چاہیے, دن رات تو اشانتی کی بات سوچتا رہتا ہے. اشانتی تو ہمارے من میں جنم لیتی ہے جنوانی کے. دیکھو بھائی, یدی جنوانی کی چرچا پڑھتے سنتے ہوئے بھی اشانتی رہتی ہے. کیا دوست تو یہی ہے مہندر بھائی, کیا کہا میں نے, دوست تو یہی ہے, خوراک تو یہی ہے. اور یہ جنوانی کی چرچا کرنے کے باوجود بھی آپ کو یدی یہ شکایت ہے کہ صاحب ہمارے گھر میں شانتی نہیں رہ رہی ہے, ہم کہتے ہیں ڈوز بڑھا دو. کیا کیا کہیں گے بولو؟ آپ یدی ایک ٹائم سوادھیائے کرتے تھے شانتی نہیں ہے صاحب گھر میں, دو ٹائم کرو کہ صاحب ابھی بھی نہیں ہے کہ ڈوز اور بڑھا دو, تین ٹائم کرو. آپ سمجھ رہے ہیں, شانتی کا اپائے تو یہی ہے, دوائی تو یہی ہے 100%, اس کے علاوہ دوسری کوئی دوائی نہیں ہے جو آپ کے ڈپریشن کو دور کر سکے. کتنے بھی ڈاکٹرز کو دکھا لو آپ, پین مینجمنٹ. آتی مکند بھائی نے بتلایا ہمارے یہاں پین مینجمنٹ والے جو ہے نا بڑا زبردست بزنس ہے پنڈت جی, بہت چلتا ہے, بہت زبردست چلتا ہے, تو اپنا تو خوب چلے گا, اپنا تو کام ہی یہی ہے پین مینجمنٹ, پین ریلیف کیسے ہو بولو. یہ پین ریلیف کا فارمولا اس سے بڑھ کر آپ کو ملے گا نہیں, کرم بدھ پریائے کی چرچا. پین ریلیف کا فارمولا اس سے بڑھ کر آپ کو ملے گا نہیں, یہ کرم پورم کیے کھوٹے کہے کیوں نہیں جیے گا. ہمارے دوارا پورو میں کیے گئے جو کرم ہیں ان کو ہمیں بھوگنا ہی پڑے گا. گیانی کاٹے گیان سے اور مورکھ کاٹے روئے. اب آپ اس کو گیان سے سمجھداری سے کاٹتے ہو یا رو رو کر کے کاٹتے ہو, یہ آپ کے اوپر نربھر کرتا ہے. کیا کرنا ہے بولو, رو رو کے کاٹنا ہے, کیسے ٹائم نکالنا ہے بولو, کیسے ٹائم نکالنا ہے؟ شانتی سے, شانتی سے, کوئی بات نہیں. اب جیسی بھی پرستھتی ہے, لڑنے جھگڑنے کا کام نقصان دونوں کا ہی ہے. ہسبینڈ وائف کی بات کرتا ہوں, پتا پتر کی بات کرتا ہوں, نقصان دونوں کا ہی ہے نا. آکلتا تو دونوں کی لائف میں دکھائی دے رہی ہے نا, ٹینشن تو دونوں کو ہی ہے نا, سکھی تو دونوں ہی نہیں ہے نا. اس سکھ کی پراپتی کے لیے کیا چاہیے؟ گیان چاہیے. اور گیان کون سا؟ کہ تتو گیان. اور کل ہم نے بتلایا تھا ہمارے پاس میں گیان پانچ ہے جنوانی میں. اما سوامی آچاریہ نے ہمارے کو کہہ دیا پانچ گیان ہیں. کون کون سے پانچ گیان ہیں؟ تو پانچ نام بتلائے, یاد کرائے, پانچوں کا سوروپ بتلایا. متی ستاوی منے پر یہ کیولانی گیانم, پرشن کھڑا ہوا ہمارے دماغ میں کہ ان پانچ میں سے سچے کون سے. آپ نے پانچ گیان تو بتلا دیے, ان پانچ میں سے سچے کون سے ہیں؟ تت پرمانے. آگے سوتر کیا ہے؟ تت پرمانے, پرمانے, یہ تت پرمانے. اب بولو, اب اس کا ارتھ سمجھاؤ, کون کون بتائے گا اس کا تت پرمانے کیا ہوتا ہے؟ تت مانے وہ پرمان, پرمان مانے سچا, پرمان مانے سچا, سچ پرمانے, پرمان ہے یہ گیان, سچے ہیں یہ گیان. سمیک گیانم پرمانم, سمیک گیان کو پرمان کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ سمیک گیان ہے, یہ سچا گیان ہے, یہ پانچوں گیان سچے ہیں, کوئی جھوٹا نہیں ہے. متی ہوگا تو بھی کام ہو جائے گا, شروت ہوگا تو بھی کام ہو جائے گا. صاحب ہم نے تو سنا تھا ان پانچ میں سے ہمارے جو گیان ہے نا وہ تو تھوڑے سے ڈسٹرب ہیں. کیا کہ گیان ڈسٹرب نہیں ہے, تیرا مائنڈ ڈسٹرب ہے. کیا سب چیز سیٹ ہے تیرے پاس میں, لیکن مائنڈ اپ سیٹ ہے تیرا. کون کون سا سیٹ ہے پتا ہے نا؟ صوفہ سیٹ ہے، ڈائننگ سیٹ ہے، ٹی وی سیٹ ہے، کتنے سیٹ ہیں اپنے پاس میں گھر میں؟ بہت سارے سیٹ ہیں نا، لیکن مائنڈ سیٹ ہے کہ نہیں؟ سب سیٹ ہے لیکن مائنڈ سیٹ نہیں ہے، یہ اپ سیٹ ہے، اس لیے ساری گڑبڑی ہو رہی ہے. اس لیے مائنڈ سیٹ کرنے کے لیے کیا کرنا، یہ کہہ رہے ہیں تت پرمانے، پانچوں گیان پرمان ہے، اور ان میں سے دو ہمارے پاس میں ہیں. جو دو ہمارے پاس میں ہیں ان دو گیانوں کو کہتے ہیں پروکش، انہیں پروکش کہہ کر کے پکارا جاتا ہے. اس کے لیے آگامی سوتر دیا ہے، جان دیجئے آگے والا سوتر کون سا ہے. آدیے پروکشم، بولو آدیے پروکشم، آدیے پروکشم، آدیے پروکشم، آدیے پروکشم. آدیے مطلب آدھی والے، شروع والے. آدیے مطلب ہوتا ہے شروع، اسٹارٹنگ، اور آدیے دوی وچن کا پریوگ کیا ہے، مطلب شروع کے دو. آدیے شبد کا ارتھ کیا ہوا؟ شروع کے دو. کیا ہے شروع کے دو؟ متی اور شروت. وہ کیا کہا ان کے لیے؟ پروکشم. آدیے پروکشم، متی گیان اور شروت گیان، یہ دو گیان کہتے ہیں پروکش گیان ہے. اچھا تو ہمارے کون سے ہیں پنڈی جی؟ جیسا متی اور شروت، یہ دو ہی ہیں. اچھا تو اپنے پروکش گیان ہے، اسی لیے تو آتما کا انوبھو نہیں ہو رہا. اب آتما کا انوبھو کرنا ہے اور گیان ہے پروکش، اور آتما کا انوبھو ہوتا ہے پرتیکش. اب کیا کریں؟ یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے. آتما کا انوبھو کیسے ہوگا؟ یہ سن، آتما کے انوبھو کے لیے پرتیکش گیان کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ پرتیکش گیان کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو متی شروت گیان کے مادھیم سے آتما پرتیکش ہو سکتا ہے. یدی متی شروت کے مادھیم سے آتما پرتیکش نہ ہو مہیندر بھائی، تو بہت بڑی پرابلم ہو جائے گی. کیونکہ یدی متی شروت سے نہیں ہوگا تو اودھی گیان اور منے پر یہ گیان، بولے وہ تو جانتے ہی پودگل کو ہیں. اودھی گیان اور منے پر یہ گیان تو پودگل کو ہی جانتے ہیں. آگے بتائیں گے، کل پڑھ کر کے بتلائیں گے آپ کو سوتر. اودھی اور منے پر یہ گیان آتما کو نہیں جان سکتے، تو پھر تو کیول گیان ہونے کا انتظار کرو آتما کو جاننے کے لیے. پھر تو کیولی ہوں گے تو جان پائیں گے آتما کو. کیا ہوگا؟ کیولی ہوں گے تو جانیں گے. ارے پہلے سے جانیں گے تب تو کیولی بنیں گے. تو آتما کو جاننے کے لیے کیول گیان کی ضرورت نہیں، آتما کو جانے گا تو کیول گیان ہوگا. تو پھر کس سے جانے؟ کیول گیان اس یوگ میں ہوتا نہیں ہے. اودھی گیان اور منے پریہ گیان سے آتما جانا جا سکتا نہیں ہے. اس لیے چنتا مت کرو، جو اپنے پاس میں ہے اسی سے جان لیں گے. صاحب یہ تو پروکش کہہ رہے ہو آپ، ان سے کیسے جانیں گے؟ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ پروکش ہیں، ان سے کیسے جانیں گے ہم؟ یہ تو بتاؤ، پروکش گیان سے کیسے جانا جائے گا آتما کو؟ جان سکتے، پروکش گیان سے آتما کو جانا جا سکتا ہے، انوبھو کیا جا سکتا ہے. متی اور شروت گیان کو یدیپی یہاں پروکش کہا گیا ہے، لیکن متی اور شروت گیان پر پدارتھوں کو جانتے ہیں تو پروکش کہلاتے ہیں، اور آتما کو جانتے ہیں تو پرتیکش ہو جاتے ہیں. متی گیان اور شروت گیان پرتیکش گیان. کیا بات کہہ رہے ہو آپ؟ عمر سوامی آچاریہ کے ورودھ میں چل کے کہہ رہے ہو؟ یہ کہہ رہے ہیں متی شروت دو یہ پروکش، آدیے پروکشم، شروع کے دو گیان پروکش گیان ہے. متی گیان شروت گیان کو پروکش کہا گیا. پروکش کیسے کہتے ہیں؟ پروکش مطلب کیا ہوتا ہے؟ انڈائریکٹ. پروکش مانے وایا، انڈائریکٹ، اور پرتیکش مانے ڈائریکٹ. دو کو انہوں نے کہا پروکش، تو باقی کے تین کے لیے کیا کہیں گے؟ آگے سوتر دیکھو، پرتیکشم انیت، باقی کے بچے ہوئے ڈائریکٹ گیان ہے، پرتیکش گیان ہے. متی گیان اور شروت گیان پروکش گیان ہے، اودھی منہ پریہ اور کیول گیان یہ پرتیکش گیان ہے. اور ہم نے متی اور شروت کے بارے میں ایک پوائنٹ آپ کو کہا ہے، कि जब जब मसीयान और श्रुतियान इंद्रिय के माध्यम से जानेंगे,
क्या
आगे 14 नंबर सूत्र दिया है, सदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, लिख गया एक सूत्र छोड़ करके, सदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, सत माने वह इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय माने पांचों इंद्रियां, अनिंद्रिय माने मन, निमित्तम माने मति ज्ञान के होने में इंद्रियां और मन निमित्त बनते हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, ये जो हमारे ज्ञान है, ये मति और श्रुति ज्ञान जब जानने का काम करते हैं तो कैसे काम करते हैं, पांच इंद्रियों और मन के माध्यम से जानते हैं, इसलिए परोक्ष है। मति श्रुत दो ये परोक्ष अक्ष मन से उपजाही, मति श्रुत दो ये परोक्ष अक्ष मन से उपजाही, समझ में आ गया अर्थ, अवधि ज्ञान मन पर जाए दो है देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने दिय स्वच्छा। और केवल ज्ञान कैसा है, वो सकल प्रत्यक्ष है। अवधि माने पर्याय और केवल ज्ञान, इनमें से दो आंशिक प्रत्यक्ष, देश प्रत्यक्ष और केवल ज्ञान पूरी तरह प्रत्यक्ष। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान परोक्ष, क्योंकि मति और श्रुति ज्ञान इंद्रियों से जानने का काम करते हैं। अब समस्या ये है, जब मति ज्ञान श्रुति ज्ञान इंद्रियों से जानते हैं तो आत्मा तो इंद्रिय से जानने में आता नहीं है, अब क्या होगा। मति ज्ञान आंख से जान रहा है, कान से जान रहा है, रसना इंद्रिय से जान रहा है, घ्राण इंद्रिय से जान रहा है, स्पर्शन से जान रहा है। अब मति ज्ञान ने जब इन इंद्रियों से जाना है तो हमने कहा ये इंद्रियां तो पर को ही जानने में सहयोग करती है, पुद्गल को ही जानती है, पुद्गल तो ख्याल ना सतीश भाई, पुद्गल क्या है, अरे पुद्गल नहीं मालूम, क्या मजाक करते हो, पुद्गल तो आपको पता है, पुद्गल माने मैं कल फिर पूछूंगा, आएंगे ना आप, क्या क्या आपको पुद्गल याद करा के जाऊंगा, पुद्गल बताया था मैंने कल भी, परसों बतलाया था, पुद्गल माने जिसमें रूप रस गंध वर्ण हो, स्पर्श रस गंध वर्ण हो, टच किया जा सके, देखा जा सके, छुआ जा सके, सूंघा जा सके, चखा जा सके, चार शब्द दिए हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें हो वो सब क्या है, पुद्गल। क्या क्या कहे, कौन कौन से, नहीं सतीश भाई बताएंगे, स्पर्श रस गंध और वर्ण, वर्ण मतलब कलर, ठीक है, स्पर्श रस गंध वर्ण ये जिसमें हो वो सब क्या है, पुद्गल। इनको कौन जानता है, स्पर्श को जाना आपसे, टच किया ना इंद्री, स्पर्शन इंद्री ने, रस कौन जान रहा है, रसना इंद्रिय जीभ जान रही है, घ्राण इंद्रिय से गंध जाना गया, और कलर किसने जाना, चक्षु इंद्रिय से जाना, माने ये स्पर्श और गंध वर्ण को जानती है ये, माने पुद्गल को जानती है इंद्रियां, प्रॉब्लम ये है, और हमें जानना है आत्मा को। लोग कहते हैं सब आत्मा दिखता नहीं है, तो दिखेगा कैसे, आंखों से तो पुद्गल दिखता है, तो आत्मा कैसे देखें, क्या आंख से नहीं दिखेगा, ध्यान से दिखेगा, क्या तो आंख से देखना चाहता है इसलिए नहीं दिखता है, तो ज्ञान से देखना चाहेगा तो दिखेगा, इसलिए आत्मा को आंख से नहीं ज्ञान से देखो, इसे चर्म चक्षु से नहीं ज्ञान चक्षु से देखो, आत्मा दिखेगा। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के माध्यम से आत्मा दिखेगा, मति और श्रुति ज्ञान यदि इंद्रिय के माध्यम से जानेंगे, पर को जानेंगे तो परोक्ष कहलाएंगे, और जब मति और श्रुति ज्ञान इंद्रियों के बिना बाहर देखते हैं तो इंद्रियों के माध्यम से परोक्ष हो जाते हैं, बाहर मत देखो अंदर देखो तो इंद्रियों की जरूरत नहीं है, गरीब भाई जरूरत नहीं है इंद्रियों की, जरूरत नहीं है आत्मा को देखने के लिए। सारी दुनिया ये कहती है आंख खोल के देख लो, क्या झूठा है संसार, आंख खोल के देख लो। हम कहते हैं सांचा है आत्मा, आंख बंद करके देख लो। खुली आंख से नहीं दिखता, बंद आंख वालों को दिखता है। बंद आंख का अर्थ प्रमाद नहीं है, निद्रा नहीं है। क्या आंख बंद करके देखो, विचार करके देखो, आपको आत्मा दिखेगा। विचारों में नहीं दिखेगा, विचारों की श्रृंखला बंद हो जाएगी और आत्मा की अनुभूति होगी। ये विधि है आत्म अनुभूति की। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान परोक्ष होते हुए भी प्रत्यक्ष अनुभूति करा सकते हैं। अनुभव प्रत्यक्ष है, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है। वेदन प्रत्यक्ष है, स्वानुभव प्रत्यक्ष है। क्या मुनिराजों को जो आनंद आता होगा, सम्य दृष्टियों को जो आत्मा का आनंद आता होगा, वो आनंद परोक्ष आता है कि प्रत्यक्ष आता है? सम्यक दृष्टियों को भी प्रत्यक्ष, अवधि ज्ञानी सम्यक दृष्टियों को तो प्रत्यक्ष आता होगा। मतिश्रुत वाले सम्यक दृष्टियों को, उनको कैसे आता है? उनको भी प्रत्यक्ष आता है। बोलो आप, क्या गजब बात है भाई। देखो क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पर। आद्य परोक्षम हो गया। आद्य परोक्षम मतलब ऐसा, आद्य परोक्ष मतलब शुरू वाले दो परोक्ष हैं, मति और श्रुत, है ना? फिर क्या कहा? प्रत्यक्षम अन्यत, प्रत्यक्षम अन्यत, प्रत्यक्षम अन्यत, है ना? माँ को तोड़ दो, माँ के दो टुकड़े कर दो। प्रत्यक्षम अन्यत, अन्य जो बचे हैं वो सब प्रत्यक्ष हैं। अब इन पांच में से सबसे पहले मति को समझाते हैं। मति क्या है उसे समझो। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। बोलिए, मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। बोलिए भाई, मति बोला ही नहीं जा रहा है, क्या करें? क्या आप बोलो, आप तत्वार सूत्र सिखा पाएंगे अपनी आगामी पीढ़ी में? सिखा सकते हैं? उम्मीद की जा सकती है? नहीं सिखा सकते ना। इंग्लिश में सिखा सकते हैं, लेकिन इंग्लिश वाला तत्वार सूत्र उठा करके देखना, सूत्र आपको संस्कृत में मिलेंगे। क्या ये जो सूत्र मिलेगा आपको, इंग्लिश वाला उठा के देखना, उसमें कौन सी लैंग्वेज में लिखा है ये सूत्र? मति है स्मृति है, बोलिए, मति है स्मृति है संज्ञा चिंता भी निबोध, चिंता भी निबोध, चिंता भी निबोध इत्यनर्थांतरम, इत्यनर्थांतरम, इत्यनर्थांतरम। अब तो बोल लिया ना सबने, मति है स्मृति है संज्ञा चिंता भी निबोध, चिंता भी निबोध इत्यनर्थांतरम, इत्यनर्थांतरम। देखो क्या क्या है, मति ज्ञान के पर्यायवाची बतला रहे हैं सब। मति ज्ञान को किन किन रूपों में देखा जाता है दुनिया में? स्मृति, स्मृति भी बोलते हैं, मति कहो या स्मृति कहो। संज्ञा भी कहते हैं, चिंता भी कहते हैं। संज्ञा चिंता, फिर कहा अभिनिबोध, अभिनिबोध भी कहा जाता है। फिर कहा इति, इति अनर्थ अंतरम, इति अन अर्थ अंतरम। इन सब में वस्तु भेद नहीं है, माने ये सब पर्यायवाची है। इत्यनर्थांतरम, इति अन अर्थांतरम, अर्थांतर नहीं है, अन अर्थांतरम, ان مطلب نہیں, وہ میں سمجھ میں آ رہی ہے بات, تھوڑی تھوڑی تو آ رہی ہوگی کسی کے, تو امید کرتا ہوں. ان انرتھ انتر اسی اسی تو دکھ رہا ہے, اتی اتنے اسی اسی شبد نکلے گا ایسا اتی انرتھ انترم, ان مانے نہیں ارتھ انترم, ان ارتھانترم وستو بھید نہیں ہے, ایک ہی ہے, متی کہو سنگیا کہو چنتا کہو ابھینبوت کہو اسمرتی کہو ایک ہی بات ہے سب. جو سمجھ میں نہیں آئے ان کے آپ سمجھ میں نہیں آئے, متی کسے کہتے ہیں؟ اندری اور من کی سہایتا سے جو جان ہوتا ہے اسے متی کہتے ہیں, یہ تو ہو گیا متی. سمرتی کسے کہتے ہیں؟ یاد, پچھلی بات پہلے کی بات کو اپنے دماغ میں واپس آ جانا, ریکال کرنا, وہ کیا کہلائے گا؟ سمرتی. سنگیا کسے کہتے ہیں؟ اسمرتی, سننا, اسمرتی اور پرتیکش ان دونوں کے جوڑ کا نام ہے سنگیا. کیا مطلب؟ آپ کو دیکھا اور پہچان لیا, ارے دنیش بھائی, ہاں پرتیبھی جان بھی کہتے, ہاں وہی ارتھ ہے. تو یہ کیا ہے چیز؟ آپ کو دیکھا اور پہلے دیکھا تھا, اور پہلے دیکھا تھا اور ابھی اس کو یاد آ گیا دیکھ کر کے, چیز دونوں کو جوڑا, ورتمان اور بھوت کال, اور بھوت سے ورتمان کو جو جوڑا گیا ہے متی جان کا ہی کام ہے. متی جان کی تو پریائے بچی بتلا رہے ہیں, متی اسمرتی سنگیا. اور چنتا کسے کہتے ہیں؟ جاپتی کے گیان کو کہتے ہیں چنتا. چنتا مانے ہوتا ہے ترک, چنتن بھی شامل کر سکتے ہیں آپ اس میں, چنتا مانے وکلپ بھی آئیں گے, چنتن بھی اس میں شامل ہوگا. اور یہاں چنتا مانے ہیں جیسے سمجھ لیجئے آپ, جاپتی گیان, دھواں دیکھ کر کے آپ نے کہہ دیا او ہو آگ لگی وہاں, چنتا. اور ابھینبودھ کس کا نام ہے؟ سادھنا سادھیہ وگیانم, دھواں دیکھ کر کے اگنی کہنا یہ ابھینبودھ ہے. اور یہ چنتا کس کا نام ہے؟ ترک, کہ جہاں جہاں دھواں ہوتا ہے وہاں وہاں اگنی ہوتی ہے. ایسا تو یہ سب متی گیان کے پریائے وچی شبد ہو گئے. چلو آگے بڑھتے ہیں, یہ متی گیان ہوتا کیسے؟ آگے 14 نمبر سوتر پڑھ چکے ہیں, تو اپنے آپ کو تو پہلے سے آتا ہے. تد اندریان اندریہ نمتم, تد اندری انندریہ نمتم, ابھی نبوت کو کہیں گے وہ انمان, ابھی نبوت کو انمان کہیں گے. دیکھو تد اندریان اندریہ نمتم مانے متی گیان میں اندری اور من نمت ہے, متی گیان اندریوں اور من سے ہوتا ہے. ہمارے پاس میں سب کے پاس میں متی گیان ہے, سب کے پاس میں اندریاں بھی ہے, سب کے پاس میں من بھی ہے. من کے بارے میں ایک بات کہوں آپ کو, من کے بارے میں ایک بات کہوں, من کسے کہتے ہیں بولو, من کسے کہتے ہیں, من کی کیا ویاکھیا ہے, کیا ڈیفینیشن ہے, من کس کو کہتے ہیں بولو, کسے کہتے ہیں؟ ترک وترک, سنگی, سنگی ہوتے ہیں, سنگی من والے ہوتے ہیں, اسنگی بنا من والے ہوتے ہیں. تو سنگی کون ہوتے ہیں؟ من والے. شاستروں میں اس کی پریبھاشا بتلائیے سنگی کی, من کی. ہت اور اہت کا وچار کرنے روپ بدھی کو من کہتے ہیں. ہت اور اہت, بھلا اور برا, رائٹ اور رونگ, اہت ان کا وچار کرنے کی سامرتھ جس کے پاس میں ہے وہ من کا کام ہے. اب یہی تو کہہ رہا ہوں میں, کیا کیا اسے من ہے؟ آپ لوگوں کے پاس ہے کیا؟ سب کے پاس میں نہیں ہے, ہے یا نہیں ہے میر بھائی؟ ہے, من ہے پکا بھائی, پکا ہے اپنے پاس میں من؟ سب کے پاس میں پیچھے بھائی صاحب ہے, آپ کے پاس بھی ہے, آپ کے پاس بھائی صاحب سب کے پاس میں, کوئی تو بتاؤ جن کے پاس نہیں ہو. यहां कह रहे हैं हित और अहित का विचार कर सके। यदि आप अपने हित और अहित का विचार नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स आपके पास में मन होते हुए भी नहीं होने बराबर है। मन होना और नहीं होना बेकार है आपके पास में, सच्ची कहते हूं मैं तो। बात जितनी कहता हूं सब सच्ची कहूंगा, यहां जिनवानी पर बैठ करके हाथ रख करके कहता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा। सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, सच्ची बात कहता हूं मैं। आपके पास मन है या नहीं है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, आप निर्णय करो। क्या आपके पास में मन है या नहीं है? मुझे नहीं मालूम किसके पास में मन है और किसके पास में नहीं है। कौन इस बात का निर्णय कर रहा है कि हमारे लिए वहां जाना अच्छा है कि यहां आना अच्छा है? निर्णय कौन करेगा बोलो? मन करेगा निर्णय। और यदि गलत डिसीजन ले लिया गया है, इसका मतलब आपके मन में प्रॉब्लम, मन ही नहीं है आपके पास में। आप इस बात का फैसला करें क्या काम करने लायक है और क्या नहीं करने लायक है। आप इस बात का निर्णय करें क्या चीज सुनने योग्य है और क्या नहीं सुनने योग्य है, क्या खाने योग्य है और क्या नहीं खाने योग्य है, कहाँ जाने योग्य है और कहाँ नहीं जाने योग्य है। ये निर्णय कौन करेगा? मन का काम है। नहीं, डेंजरस नहीं है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है सुनकर आप सबके पास में मन है। क्या क्या सर, मुझे अच्छा लगा ये जानकर के सबके पास में मन है। हाँ, ये बात अलग है कि हम मन को प्रयोग में नहीं ले रहे थे। क्या वो स्पेयर पार्ट की जैसे पड़ा था? क्या? लेकिन अब हम क्योंकि अब यहाँ जिन मंदिर में आए हैं, ये तत्वार सूत्र उमा स्वामी आचार्य सिखा रहे हैं हमारे को, तो हम अब अपने मन का प्रयोग करेंगे। हमारे पास में बहुत जबरदस्त चीज है सर, आप उसको यूज में नहीं ले रहे हो। आपके पास में इतनी अच्छी डिवाइस है और आपको उसको यूज में लेना नहीं आ रहा है। क्या आप उसको कैसे यूज में ले सकते हो? सीखो प्रणेश भाई से कैसे यूज में लेना। अरे मन होगा तो समझ होगी। आपने समझ नहीं दिख रही है, इसका मतलब हमको तो शंका है कि मन है भी के नहीं है। आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ सब एक ही बात है। इसलिए भाई सहनी होना, मन होना, बुद्धि है हमारे पास में। हम अकेले पंचेंद्रिय नहीं है, हम सहनी पंचेंद्रिय हैं। सहनी, सहनी मतलब मन वाला, सहनी या संगी दोनों एक ही शब्द है। संगी कहे या सहनी कहे एक ही बात है। हम सब मन वाले हैं, हम सब विचारवान हैं। क्या किसने कहा? हम भी तो प्राणी हैं। गाय भैंस के पास में, उनके पास में भी होता है, इसीलिए तो नोटों पे लात मारती हुई घास पे चले जाती है। उनके पास में मन है, उनके पास में बुद्धि है, तो डॉलर के ढेर लगाओ और दूसरी तरफ घास पड़ी हो तो डॉलर के ढेर को पैर से कुचलती हुई घास की तरफ चले जाएगी, क्योंकि उनके पास में मन है। और हम उधर नहीं जाकर के डॉलर पे झपटते, इसका मतलब हमारे पास में क्या करें, क्या खाना और क्या नहीं खाना, ये विवेक है उनके पास में। आप गाय को रात को रोटी खिलाओ, नहीं खाएगी। कबूतर शाम को बैठ जाते हैं, बाद में नहीं खाते, रात्रि में नहीं खाते। मन है उनके पास में, सैनी पंचेंद्रिय है। हमारे पास में पता नहीं क्या है, क्या ये डुप्लीकेट तो नहीं आ गया कहीं? ये मन मन ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है? ज्यादा है ओरिजिनल मन है क्या अपने पास में? तद इंद्रिया इंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय और मन जिसमें निमित्त होता है वो कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान है। हम सबके पास में इंद्रिया भी है और मन भी है, ठीक है। अब इस मति ज्ञान की जानने की प्रोसेस क्या है? ये मति ज्ञान किस प्रक्रिया के माध्यम से जानता है? बहुत मार्मिक बातें, चार तरह के स्टेप रहे हैं उसने। मति ज्ञान के माध्यम से जानने की प्रक्रिया में चार स्टेप रहे हैं। पहला स्टेप अवग्रह है, अवग्रह आगे 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 वाला सूत्र है, 15 नंबर का सूत्र है, अवग्रहे हवाय धारणा, बोलिए अवग्रहे हवाय धारणा, अवग्रहे हवाय धारणा। इसमें चार शब्द निकलते हैं यहाँ, माने पूर्व मतलब क्या कहेंगे उसको, स्टेज है मति ज्ञान की, मति ज्ञान की फर्स्ट स्टेज है अवग्रह, सेकंड स्टेज है ए की मात्रा दिख रही है ना ऊपर और हा दिख रहा है उसे कहेंगे ईहा, ईहा। पहला अवग्रह, दूसरा ईहा, ठीक है दो हो गए। तीसरे नंबर पर है आवाय, हा नहीं और अनार वाला, हा हा नहीं, आवाय आवाय, अवग्रह ईहा अवाय। और चौथे नंबर पर है धारणा, चार हो गए, अवग्रह ईहा अवाय और धारणा, चार स्टेप है। किसे कहते हैं अवग्रह, अवग्रह किसका नाम है, अवग्रह के बारे में ऐसा कहते हैं, फर्स्ट स्टेप है ज्ञान की, जहां शुरुआत हुई ना बस कुछ है, कुछ है। आप बाहर से यहां आए या ऐसा समझ लो कुछ भी आपके सामने से निकला, आप उस चीज को पकड़ नहीं पाए, आपको उसे जानने के बारे में कोई विकल्प भी नहीं उठा, तो कुछ है होगा कुछ, मतलब वो कुछ निकल गया, बस छू करके निकल गया कुछ आपके, ऐसा बैठा यहां आपने ऐसा किया कि क्या था ये, विकल्प खड़े होने का नाम तो है ईहा, सेकंड नंबर हो गया, ज्ञान बढ़ गया, आगे ज्ञान का विकास हो गया, ज्ञान की वृद्धि हो गई, लेकिन ईहा के पहले अवग्रह, अवग्रह किसका नाम, बस कुछ है। रोड पर चलते हुए आपके पैर के नीचे कुछ आया, आप जल्दी में थे, आपने ध्यान भी नहीं दिया और भूल भी गए, याद भी नहीं है आपको, वो क्या था, अवग्रह। पैर के नीचे एकदम कुछ आया, आपने कुछ ध्यान नहीं दिया। हाँ यदि आप आगे बढ़कर ये सोचे क्या लगा, क्या था वो, ये जो इच्छा हुई है उस इच्छा को कहते हैं ईहा। ये है या ये है, ये जानने की इच्छा, जिज्ञासा कह सकते हैं, दो में से क्या था, ये जो इच्छा खड़ी हुई इसका नाम कहा ईहा। आफ्टर दैट ज्ञान और आगे बढ़ा और विकास हुआ ज्ञान का और हम किसी निर्णय पर पहुंच गए कि यही है, वो आवाय है, अवग्रह ईहा आवाय। और फोर्थ नंबर वो है धारणा, पक्का हो जाना, वो है धारणा। देखिए शास्त्रों में ऐसे उदाहरण दिए हैं, हम अपने घर की छत पर खड़े हैं, घर की छत पर खड़े हैं, हाँ कोई बात नहीं, हम अपने घर की छत पर खड़े हैं और बहुत दूर हमारे को कुछ व्हाइट कलर का कुछ दिखाई दिया, जानने ठीक है कुछ होगा, ये क्या है, अवग्रह। और हमने उसको देखा और मन में उस विचार आया, यार वो जो है वो बतख है, या क्या कहेंगे उसे, ध्वजा फ्लैग है, वो क्या है, वो बगुला है, बतख है, वो भी सफेद होता है, वो ऐसे फैलते दिखाई दे रहे हैं, क्या चीज है वो, ये इच्छा खड़ी होने का नाम है ईहा, ठीक है। और इसके तुरंत बाद जो हम निर्णय कर पाए कि अरे ये तो देखो कभी ऊपर उठते हैं कभी नीचे बैठते हैं, तो ये ध्वजा नहीं हो सकती है, आपने निर्णय कर लिया ये तो पक्षी है, ये आवाय हो गया। अब उसके बाद आवाय होने के बाद में क्या होगा, اب آپ چھت پر ادھر ادھر گھوم رہے تھے اور آپ بیٹھے ہیں وہاں, ادھر دیکھ بھی نہیں رہے ہیں, اور کسی نے پوچھا یار وہ کیا ہے وہاں پہ, تو آپ نے ترنت بتلا دیا حبشی ہے. ٹھیک ہے, سے بتا دیا, دھارنا میں تھا. دھارنا کب ہوگی؟ اوگرہ ایہا اوائے اور دھارنا. ایک بات دھیان دینا, جو چیز دھارنا میں ہوگی وہ چیز اسمرتی کا وشے بن سکتی ہے, جو چیز دھارنا میں نہیں ہوگی وہ چیز اسمرتی کا وشے نہیں بنے گی. اس لیے کسی بھی وشے کو اسمرتی تک لے جانے کے لیے اسے دھارنا کے لیول تک پہنچا دو جس سے آگے فردر ریکال کیا جا سکے اسے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کیا کہہ رہا ہوں میں؟ بھوشیہ کے لیے اس تتو جان کو اپنے ہردے میں, اپنے انترنگ میں اس گہرائی سے دھارنا کے لیول پر بیٹھاؤ کہ جیون پورا بھی ہو جائے تو اگلے جنم میں یہ دھارنا گیان اسمرتی بن کر کے واپس آپ کو یاد آ جائے. یہ کام ہو سکتا ہے, کٹھن کام نہیں ہے, ہارڈ ورک نہیں ہے. کوئی بھی بات دھارنا تک کب پہنچتی ہے, کوئی بھی بات اسمرتی میں کب تک رہتی ہے بولو؟ کوئی چیز آپ کے یاد کب تک رہے گی آپ کو؟ آپ نے جتنی گہرائی سے اس کو پڑھا ہوگا, سمجھا ہوگا, اتنا لمبے سمے تک یاد رہے گی, اور جتنا ہلکے استر پر لیا ہے اتنا ہلکے سمے تک یاد رہے گی. کیا پتگل کسے کہتے ہیں ستیش بھائی؟ تو ایسا آپ سے پوچھا اور آپ کا جواب آیا کیا, تو اس کا مطلب وہ بات آپ کے دھارنا میں بیٹھ گئی. میں کچھ دھارنا سمجھانا ہے کیا بھائی؟ آپ سے پتگل کی پریبھاشا نہیں سننی ہے, وہ تو کل سن لوں گا, آج ہی تھوڑی نا سننی ہے. نہیں وہ تو یاد ہو گئی ہے, پکا ہے, وہ تو گئی اب تو دھارنا میں کیا. اور کل یدی نہیں سن پایا کیا, تو پھر نیکسٹ ایئر آ کے سنوں گا. ہاں میں نے یہ بات دھارنا تک بیٹھ جانی چاہیے, یہ بات جنوانی کی بات. دیکھو بھائی یدی یہ بات دھارنا تک نہیں بیٹھی, یہ بات ورتمان میں سننے تک ہم نے سیمت رکھی, تو ایک بہت بڑا نقصان ہوگا. وہ نقصان یہ ہوگا کہ سمے پڑے پر یہ بات کہاں یاد نہیں آئے گی, جب ضرورت ہوگی نا تو بات یاد نہیں آئے گی. اور سمے پر ضرورت سمے پر یدی یہ بات یاد نہیں آئے تو پھر کیا ہے, تو بیکار ہے. مطلب بولو, آپ کے پاس میں بہت دھن تھا گورنمنٹ سے بچانے کے لیے, پریوار سے چھپانے کے لیے, وہ تین نمبر جانتے ہیں نا, تین نمبر منوج بھائی یاد آ گیا نہیں؟ یاد آیا ابھی نہیں آیا یاد؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ, کس سے چھپانا چاہتے ہیں یہاں؟ دو تک پہنچے. ارے نہیں نہیں, سب کے پاس تین نمبر ہوتا ہے. تین نمبر تو جانتے ہیں ستیش بھائی, تین تو جانتے ہیں. یہ تو آپ کی دھارنا کا وشے ہے, پچھلے سال سے لے کر ابھی تک آپ کے دماغ میں وہ تین نمبر بیٹھا ہے. دھارنا میں بیٹھا تھا وہ. مجھے یہ کہنا ہے آپ سے, آپ نے یدی ان باتوں کو سمجھ لو, کوئی بھی چیز ایسی جو آپ نے چھپا کر کے رکھا ہے. تین نمبر کی بات اس لیے کہی کیونکہ فیملی کو پتا نہیں ہے, کسی کو بھی پتا نہیں ہے, اور آپ نے اس کو چھپانے کی درشتی سے کہیں رکھ دیا, اور اب آپ اس کو بھول گئے. اب کام پڑا آپ کو, پیسہ چاہیے. اب اس سمے یدی آپ کو وہ یاد نہیں آیا تو پیسہ کس کام کا؟ وہ پاسورڈ یاد نہیں آیا تو کس کام کا؟ بولو, آپ یدی اس فائل کو ایکسس نہیں کر پاؤ تو کس کام کی؟ ہونا نہیں ہونا بیکار ہو گیا نا. ایسے ہی ہم کہہ رہے ہیں جو باتیں آپ نے تتوار سوتر کی یہاں اما سوامی آچاریہ سے سنی, یدی یہ باتیں دھارنا تک نہیں پہنچی اور جس دن ضرورت پڑی کھاٹ پکڑ لینے پر اس دن یاد نہیں آئی, تو آپ کا یہ سننا کچھ مطلب نہیں نکلا. یہ بستر پکڑ لینے پر یہ بات یاد آنی چاہیے, یہ بات تب یاد آنی چاہیے جب بچے ہمارے کو پلٹ کر کے سامنے جواب دے رہے, تو یہ جنوانی کی بات ہمارے کو سہارا بنتی ہے, اس سمے یہ دھارنا گیان کام آئے گا. कि उपकार है जनवाणी माँ का शुद्ध पंचमी है, उपकार को तो याद रखना ही है आपको कम से कम, और नहीं तो आज आज तो याद रखो, आज आज तो याद रखेंगे कि उपकार है जनवाणी का, याद रखना कि नहीं रखना, इसे धारणा तक पहुंचाना कि नहीं, कब के लिए, कब के लिए धारणा, जीवन भर के लिए। तो जीवन भर के लिए कोई बात कब याद रहती है, जब पक्की करोगे, बार बार में दोहराओगे, चिंतन का विषय बनेगा, विचारों का विषय बनेगा। सतीश भाई कल आओगे ना आप, तो पुद्गल की परिभाषा नहीं बता पाओगे यदि घर जाकर के नहीं दोहराओगे तो। यदि गाड़ी में चलते हुए आपने नहीं सुनाया ना इनको पुद्गल की परिभाषा क्या, तो धारणा से निकल जाएगा। लेकिन ये आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, सबकी बात कह रहा हूँ, हमारी भी यही हालत है। कोई भी बात को यदि हम वापस नहीं दोहराते, रिपीट नहीं करते हैं, स्लिप हो जाती है दिमाग से। आप उस चीज को बार बार में दोहराते रहो, बार बार में दोहराते रहो, बार बार में दोहराते रहो, नहीं तो वो चीज याद नहीं रहेगी आपको, कुछ भी याद नहीं रहेगा। कोई भी चीज आप भूल क्यों जाते हैं, मैंने दो चार साल पहले चर्चा की थी आपके यहाँ ज्ञानावरणी कर्म के बारे में। ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र होता है, उदय होता है, बात निकल जाती है दिमाग से। ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम उदाहरणा में काम करेगा। मति ज्ञान के प्रकारों में, मति ज्ञान के जानने की प्रोसेस में लास्ट स्थिति को हमने कहा धारणा, और धारणा में वो बात चले गई, वो आ जाएगी स्मृति से। मैंने जो धारणा तक ले जाकर के छोड़ दिया, इसका मतलब ये उसको लाइफ में कभी भी रीयूज किया जा सकता है। वो स्टोरेज में चले गई, वो सेफ में चले गई, हमारे लिए सुरक्षित हो गई, वो स्टोरेज में चले गई। मेमोरी का जो स्टोरेज है हमारा, ये स्टोरेज कम नहीं है, बहुत बड़ा स्टोरेज है, बहुत बड़ी कैपेसिटी है। कितने गिग कितने जीबी का स्टोरेज है ये, कितने टीबी का स्टोरेज है आपका माइंड, कितने टीबी का स्टोरेज है जी भाई, आप तो सर्वज्ञ, सब कुछ एवरीथिंग इसमें आ सके, इसमें
सबका सिलेक्टिव स्टोरेज का माइंड है,
सिलेक्टिव है, भूल जाते हैं। आप भूल सकते हो किसी चीज को, भूलना अपने कंट्रोल में नहीं है। आप किसी चीज को भूलना चाहो तो भूल नहीं सकते हो क्या, वो बार बार याद आ जाती है। भूलने से चीज भूली नहीं जाती, जिसको भूलना चाहते हो वो और ज्यादा याद आती है, इसलिए लोग भुलाने के लिए पीते हैं। पता नहीं भाई, मैंने तो सुना है लोगों से, लोगों से सुना है हमने तो ऐसा, कि शायद लोग इसीलिए पीते। अरे उससे भी भूलते नहीं है, ज्ञान इतना मंद हो जाता है, गहल में चले जाते हैं। आप देखो चेतन होकर के जड़ होना चाहता है जो व्यक्ति, पीना चाहता है, जीव होकर के अजीव बनना चाहता है, तो चिंता मत कर, तेरी भावना साकार होगी, मर करके एकेंद्रीय बन जाएगा, सारा ज्ञान ऐसा जड़वत हो जाएगा। क्या चाहते हो आप, स्मृति में रहे कोई चीज, सत्य विज्ञान तर्क अनुमान आगम निर्वाणी तक पहुंचे, अवग्रह ईहा अवाय धारणा, बात धारणा तक पहुंच गई, धारणा तक पहुंच गई, बोले अब, बोले अब नहीं निकल पाएगी। अब सुनो, अब धारणा में ले जाने के लिए आपके पास में दो तरह की बातें हैं। क्या धारणा में तो सब बातें जा सकती, ज्ञान है वो तो, स्टोरेज है। अब आप अपने स्टोरेज में क्या बातें स्टोर करते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने स्टोरेज में क्या बातें स्टोर कर रहे हो, स्टोरेज है, आप चाहो तो उसे फालतू की फाइलों से भर दो तो भर जाएगा वो तो, और आप चाहो तो मतलब की चीज रखो। तो बोलो आप अपने स्टोरेज में, मुझे पता है 99% लोगों की पोजीशन, आप लोगों की तो पता नहीं मेरे को, अब आपकी आप जानो, लेकिन 99% लोग अपने दिमाग का स्टोरेज इन बातों से भरते हैं। उसने मुझे कहा था मैं भूल नहीं सकता, उसने मुझे गाली दी थी, पंडित जी क्या बताऊं मैं, उसके कान ऐसे चुभते हैं मेरे को, क्या बताऊं मैं, कि तू अपने स्टोरेज में क्यों रखता है उसको, तो तू अपने स्टोरेज से उन बातों को निकाल क्यों नहीं देता, तू उन बातों को अपनी धारणा का विषय मत बना। किसी ने यदि तुम्हारे साथ में कुछ अच्छाई की है, कुछ अच्छा काम किया है, आप उसे अपनी धारणा का विषय बनाओ, उसे सेफ रखो। और यदि किसी के द्वारा कोई अपशब्द कहे गए हैं, स्टोर करने जैसी चीज नहीं है। किसी ने गालियां दी हो, स्टोर करने जैसी है नहीं है। क्यों स्टोर करते हो? संभलो भाई, संभलो, संभालो अपने आप को। गलत बातें, खराब चीजें, अपशब्द, खोटा व्यवहार किसी के द्वारा हमारे माध्यम से हमारे लिए किया गया है, कोई व्यक्ति हमारी सुनता नहीं है, कोई व्यक्ति हमारे को सुनाता है, कोई व्यक्ति हमारे को अपशब्द बोलता है, कोई व्यक्ति हमारे लिए बड़बड़ाता रहता है, ऊटपटांग बोलता रहता है, कुछ भी जो भी चलता हो समझ लो आप, यदि उन सब बातों को हमने हमारे स्टोरेज में जगह दी तो हमारा स्टोरेज ही खराब होगा। और वो ऐसा वायरस है कि वो अच्छे माल को भी खा जाता है। आपके स्टोरेज में जो अच्छी बातें होती है उनको भी खा जाता है। तो ये नुकसान मत होने देना, इस नुकसान से बचो, स्टोरेज को संभालो। स्टोरेज के लिए क्या शब्द दिया है उमा स्वामी आचार्य ने? धारणा, धारणा, अवग्रह ईहा अवाय धारणा। आपके स्टोरेज में जनवाणी की बातें होनी चाहिए, आपके स्टोरेज में भेद विज्ञान की बातें होनी चाहिए, आपके स्टोरेज में तत्व ज्ञान होना चाहिए, आपके स्टोरेज में क्रमबद्ध की चर्चा होनी चाहिए, आपके स्टोरेज में वस्तु स्वरूप की बातें होनी चाहिए। ये बातें यदि आपके स्टोरेज में पूरी भरी रहेगी तो आने तो देखे कोई बात टिकी नहीं पाती है। देखो भाई, यदि आपके स्टोरेज में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग मेजोरिटी दृष्टि होगी वो राज करेगा। अब मेजोरिटी किसकी है बतलाओ? आपके इस स्टोरेज में यदि बुराइयों की मेजोरिटी है तो वो हावी रहती है, और वो हावी रहती है तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है व्यक्ति, फिर बीमारियां लग जाती है, फिर परेशान हो जाता है। अब क्या करना है? अब उसको स्टोरेज से निकालो, और उसको स्टोरेज से निकाल करके क्या करना है? अब ये स्टोरेज में डालो तो ये चीजें रहेगी तो वो खराब बातें दिमाग से निकल जाएगी। तो इस तरह से ये जानने की प्रक्रिया है, किसी की भी बात को धारणा तक तो बहुत बड़ी चीज है, गाली और अपशब्द, खोटी बातें, क्या कह रहा हूं ध्यान देना, धारणा तो बहुत बड़ी चीज है, निर्णय तक भी मत पहुंचाओ, हवाई भी नहीं, ईहा का विषय भी मत बनाओ। अरे अवग्रह होकर के छोड़ दो। अवग्रह मतलब कर्णेन्द्रिय तक आई बात, बस आगे नहीं, आगे घर मत करने दो उसको। निहाल हुए ये मति श्रुत ज्ञान, इससे आत्मा के स्वरूप को समझकर, इससे आत्मा के स्वरूप को जानकर प्रत्यक्ष अनुभूति, आत्मा की अनुभूति की जा सकती है। ये चमत्कारिक ज्ञान हमारे पास में वर्तमान में मौजूद है। हम यदि अपने ज्ञान का दुरुपयोग न करते हुए सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से अल्पकाल में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे। ये जिनवाणी की सच्ची आराधना होगी। आज श्रुत पंचमी पर्व के अवसर पर हम सभी ऐसी सच्ची आराधना करें जिनवाणी की, और जिनवाणी की बातों को अपने हृदय में उतार कर अपने जीवन को सफल करें, सार्थक करें, धन्य करें। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं समाप्त करता हूं। Yeah.